का नाम क्या है? तो वो ताकने लगी इधर उधर, गोपियों ने गुलछा देना आरंभ कर दिया, तुम किसकी बेटी हो लाली, तुम किसकी बेटी हो, मजाक कर रही है लाली लाली का, नहीं बता सके। अरे तेरा ससुर कौन है? कुछ उत्तर न दे सके, बस गुलचों से मुंह फुला दिया शंकर का। जो शंकर सबके आराध्य हैं, सबको देने वाले हैं, जो कुछ मांगो अवघरदानी, और गाल मार करके फुला करके उनको वहीं पर। अब तो वो रोने की गिड़ाने लगी, पूर्णिमा जी को दया है, पूर्णिमा जी का स्मरण किया, पूर्णिमा जी ने कहा गोपियों से, कहा देखो इसको ऊपर में दया करो, ये दया करने योग्य है, मैंने इसको ऐसा किया है, गोपी वेश बनाया है, अब तुम लोग इसको दया करो, ये दूर से ही देखेगी, उधर नहीं जाएगी, किंतु ये देखने का अधिकारी। कृष्ण, अच्छा आज से तुम्हारा नाम, ये पूर्णमासी जी की कृपा तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी आराधना से यह नहीं होता, पूर्णिमा जी हमारी इच्छा शक्ति है, इसलिए इनकी इच्छा हुई है, इसलिए वहीं रहना, निकट में मत आना, और वहीं से तुम हमारे इस राष्ट्र को देखना। तो शंकर जी को भी इतनी आराधना पर भी राक्षसस्थली में जगह नहीं मिलती है वृंदावन। ये गोपियां जो हुई हैं ऐसी तैसी नहीं है, ब्रह्मा जी और शंकर और सबके ये आराध्याएं, गोपीश्वर मैंने क्या, गोपियां ही जिनकी ईश्वरी हैं, इसलिए गोपीश्वरी हैं, ऐसा नहीं कि गोपियों के ईश्वर वो हैं। इनकी चरण की धूलि की आकांक्षा करती हैं ये भी, ये हमारे उद्धव जी के सुर में सुर मिलाकर और सुखदेव गोस्वामी के सुर में सुर मिलाकर कहते हैं, वंदे नंद ब्रजई स्त्री नाम पादरेणुम अभिक्ष्णस जासां हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्। ये गोपियां उनकी लीला कथाएं ही जो स्मरण करे श्रवण करे, विश्व ब्रह्मांड को उनके मुख से निकली हुई कथाएं पवित्र कर देती हैं, ऐसी ये गोपियां हैं। तो ये श्रुतियों को भी लोभ हुआ और उन्होंने कठोर आराधना की गोपाल मंत्र से, और इसके बाद में काम गायत्री मंत्र से, और तब जाकर के ये गोपी, उनको भी उनके पतियों ने रोक दिए, उनमें भी कषाय है, वह सीधे नहीं जाएंगी, गोपियों की कृपा से तब फिर वो राष्ट्र में प्रवेश कर सकती हैं। लक्ष्मण जी ने देखा रामलीला में जितनी कठोर आज्ञाएं होती हैं ये हमको देते हैं, हमने बहुत से ऐसे कठोर काम किए हैं जो हमको, अब इस बार प्रभु आप आइए, मैं आपका बड़ा भैया होकर के आऊं, और तब फिर मैं आपको आदेश दूं, जैसा अभी आप आदेश देते हैं तब फिर पालन, तब आप समझेंगे, इसलिए आप, आपका बड़ा भैया होकर के आना चाहिए। जितने पूर्वासी थे रामचंद्र जी के, किष्किंधा का नहीं, वो निषाद राज था, सुग्रीव थे, विभीषण थे, रामचंद्र जी ने उनको सखा बनाया, मिताली उनसे की, किंतु बने रहे सेवक, सखा का भाव किसी में उत्पन्न नहीं हुआ, कहने के लिए सखा, किंतु सभी लक्ष्मण तक, भरत तक, सीता तक, सभी दास और दासी हैं, हाथ जोड़ करके राम के सामने। राम ने कोई आदेश दे दिया, उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, और ब्रज के सेवक कैसे हैं, उनके सखा अपना जूठा दे देंगे, उनके कंधे पर चढ़ जाएंगे, कृष्ण भागेगा उसको पीछे से पकड़ करके, कहेंगे हमारी खेल का, तुम ये नहीं देगा, तुमको अभी भेड़ बनना पड़ेगा, हमें ये घोड़ा बनना पड़ेगा, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगा, और जबरदस्ती से कृष्ण को पकड़ करके उसके कंधे पर चढ़ जाएंगे। राम का कोई सखा है ऐसा? विभीषण है, वो निषाद राज हैं, लक्ष्मण जी भी भैया हैं, भैया तो परस्पर बराबरी के होते हैं, कोई भी उनके बराबरी का है, कृष्ण के, राम के कंधे पर चढ़ने वाला कोई है, किंतु उनकी अरमान रह गई इन सब लोगों की, सखा हम लोग हुए, किंतु यथार्थ में सखा नहीं, सचमुच में इनका कभी सखा होता। इसलिए ये लोग भी कुछ कुछ लोग सखा हो करके आएंगे। राम ने अच्छा ये मस्त, कोई चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। इसलिए उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं ये। रामचंद्र जी ने देखा जितने बंदर भालू हैं हमारे लिए प्राण विसर्जन किए हैं, कितना कष्ट किया, और हमने इनको एक फल भी अपने हाथ से नहीं दिए जब भैया ये खा लो। अवैतनिक बिना खाने के कुछ भी नहीं दिया हमने, मैं इनका ऋणी रह गया। तो ये ऋण रह गया तो इनका ऋण भी जो होना चाहिए, कैसे हूं, इनको कुछ करना चाहिए। इसलिए उन बंदरों को कृष्ण लीला में बुलाया था, उसके लिए प्रतीक्षा करेंगे। ये बंदर भी आए और मैया जब मुझको मक्खन और ये खिलाएं, घरों में चोरी कर मक्खन इनके लिए चोरी किया और चोरी करके देने के लिए प्रतीक्षा कर रही है कब अवसर आएगा। बस मक्खन लिया, अपने थोड़ा सा लिया, बंदरों को दिया, उसके पहले ही जहां वो मक्खन निकालते हैं बंदर पहुंच गए उनके हाथों से ही, बड़े किलकारी मार करके बड़े प्रसन्न होकर के, काज भूसुंडी की भी इच्छा रही, काज भूसुंडी की बड़ी इच्छा रही प्रभु को मुंह से मिले, किंतु उनका मैं मुख में चला गया। उनके साथ में कोई विशेष प्रीति युक्त सेवा मैंने नहीं, इसलिए अपने परिवार के साथ में भूसुंडियों का दल कौवे के रूप में आया। और जब कृष्ण जब जब मक्खन खाते हैं तो वो आ जाते हैं, उनको भी वो भी हाथ से मक्खन। ऐसे नहीं जाने कितने कारण थे, कृष्ण गोलोक वृंदावन में बैठे हुए विचार कर रहे हैं, और इतने में कंस इत्यादि राजाओं के उत्पात से और राम रावण के युद्ध में मरे हुए जितने राक्षस थे वो सब राम के हाथ से मारे गए हैं, या हनुमान जी के हाथ से, लक्ष्मण जी के हाथ से, उनकी तो सुगति होनी चाहिए। इसलिए सुगति होने के लिए उन लोगों वो लोग सब बड़े बड़े क्षत्रिय राजा के रूप में अवतीर्ण हुए, उनको रिद्धि सिद्धि सब प्रकार के धन संपत्ति परिवार ये सब उनको मिला उनका भोग। किंतु ये थे राक्षस, इसलिए पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगे। दुर्योधन इत्यादि इसी सब श्रेणी के थे, जितने भी राक्षस हुए वो सब क्षत्रिय हुए हैं। क्षत्रियों के उत्पात से पृथ्वी देवी भार नहीं सह सके, पृथ्वी के ऊपर में लाखों पर्वत रहे उसे भार नहीं होता, भार होता किससे, असुरों के अत्याचार से। जब वो अधर्म का काम करना चाहते हैं, साधु संतों का आदर नहीं करते, उनके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, उनके ऊपर में अत्याचार करते हैं, साधु संतों को ये सब असुर लोग सब खाने पीने लग गए, उनके प्रति अत्याचार करने लगे, पृथ्वी नहीं सह सकी। ब्रह्मा जी के पास में गाय का रूप धारण करके गई और वहां जाकर के उनसे निवेदन करके रोने लग गई। उसके निवेदन को सुनकर के समस्त देवताओं और ऋषियों को लेकर के ब्रह्मा जी फिर सत पर गए और वहां पर समाधि मग्न होकर के उनकी फिर समुद्र में जो रहने वाले जो विष्णु हैं उनकी आराधना कर। उस समय में उनकी आराधना से वो प्रभु प्रसन्न हुए, क्षीरोदसाई विष्णु, और बोले तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी, हमारे जो प्रभु हैं उनको पता लग गया है, उनके प्रभु कौन है, कृष्ण उनके हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान, जितने भी अवतार हैं समस्त अवतारों के पूर्ण अवतारी कौन है, ये कृष्ण है। राम नृसिंह सबके एक ही तत्व है, पूर्णिमा का चांद जैसे जैसे ये सब प्रकाश होता है शक्ति का रस का, उससे इस तरह से नाम होता है, किंतु कृष्ण में संपूर्ण रस संपूर्ण कलाएं संपूर्ण शक्तियां, इसलिए ये स्वयं भगवान है। इसलिए अपने प्रभु की बात जान गए और ब्रह्मा जी से बोले जी हमारे प्रभु ये सब अवगत हुए हैं, तुम लोग जल्दी से जदुकुल में और गोपकुल में तुम लोग जन्म ग्रहण करो, तुम्हारी स्त्रियां भी उनकी शक्ति जो है श्रीमती राधिका की सेवा के लिए वो लोग भी अवतार ग्रहण करें। प्रभु बहुत जल्दी जाने वाले हैं, बस वो प्रभु ने उनकी प्रार्थना से अब निर्णय किया कि अब चलना है। अभी तो देख रहे थे कब चलूं, ये सब काम इतने जो बतलाया ना 10, 11, 12 तरह के, अब वो समय आ गया ब्रह्मा जी के प्रार्थना से कि अब बस तुरंत आना है। तब वो ऐश्वर्य भाव से अंश रूप में नारायण के रूप में मथुरा में अपूर्ण रूप में यशोदा के गर्भ में गोकुल में वो नंदनंदन यशोदानंदन के रूप में आए। कौन कौन सी लीलाएं की, कैसे ये सब हुआ, अब आगे की कथा से आप लोग समझ करें। यहाँ से कथा होगी, मैंने बहुत समय ले लिया, आप लोग एक कीर्तन बस। कौन है सर? यद्यपि प्रसन्नता नहीं हुई तो चाहिए इसके बातों का कोई ठीक नहीं प्रसन्नता इसलिए नहीं हुई कि इसका कोई ठीक नहीं। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्टा खने खने अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादो अपि भयंकर। जो व्यक्ति जल्दी से संतुष्ट हो जाता है और जो जल्दी फिर थोड़े देर में ही एक मिनट में फिर प्रसन्न हो जाता है, फिर साथ ही साथ में क्रोधित हो जाता है, उसके चित्त की स्थिरता नहीं है, कब क्या करेगा वो भी नहीं जानता, दूसरे क्या जानेंगे, आज इसने छोड़ दिया और कल फिर कहेंगे जैसे जाओ ले आओ और उसको कहा। इसलिए यदि वैसे अव्यवस्थित चित्त वाले हैं जिनका चित्त चंचल है उनकी यदि कृपा भी है तो वो भी बड़ी भयंकर होती है, इसलिए इन लोगों से बच करके रहना चाहिए। ऐसा कर करके वो चले गए और कंस उनको छोड़ दिया। जब कंस ने छोड़ दिया भक्तों को बड़ा आनंद हुआ, उनके परिवार वालों का आनंद हुआ, देवताओं को आनंद हुआ, बस घर घर में बधाई बजने लगी और सब भक्त लोग मिल करके कीर्तन करने लगे। कैसा कीर्तन किया थोड़ा सा कीर्तन
गजमुरी पूर्णिमा दुष्टवाटी राधाकुंडम गिरीवराधिकृपया श्रीगुरुकल्पतभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्राव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो संसर्वभूतहृदयं मुनिना तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायराधि तन्मय माम चयन भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय।
आज सवेरे कृष्णचंद्र जी का आविर्भाव हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने बड़े सावधानी के साथ में विशेष करके परीक्षित महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें बतलाएं, हम लोग उसका थोड़ा सा विश्लेषण करें। कहाँ से यार नवीन मिल सी ये तो कम फर्स्ट एंड देन इस पर हम लोग कृष्ण के क्यों एक देखो भाई तो जो के देखे के जाने के तो कूलर हटा दो उसको उधर से कहीं से लगा दे या एकदम पीछे लगा दे। कृष्णचंद्र जी के जन्म से पहले उसका यहाँ पर दे दिया, कहाँ रखा उसका, कहाँ पर है उसको पर दे दिया, यहाँ पर रख दो, तुम लोग चलाओ, कहाँ गलत उसको ले, हाँ ले आकर के यहाँ लगा, बिगड़ जाएगी। तो कृष्णचंद्र जी के जन्म के पहले बलदेव जी का आविर्भाव हुआ। इसमें इंगित तो दिए हैं किंतु उतना स्पष्ट वर्णन नहीं किए हैं। गोपाल चंपू में और दूसरे दूसरे ग्रंथों में इसका सब कुछ वर्णन मिलता है कि जिस समय में कंस ने उनको कैद कर लिया और छह गर्भ के लड़के मारे गए तब बसदेव जी ने 3 महीने की गर्भवती रोहिणी जी को घोड़ी पर चढ़ाकर गोकुल में भेजा। नंद पत्नी यशोदा जी की ये सखी थी, बड़ी प्रिय सखी थी, जैसे नंद बाबा और वसुदेव जी भाई भाई थे, एक क्षत्रियाणी के गर्भ से पैदा हुए और एक गोपी के गोप कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुए नंद बाबा और वे थे क्षत्रियाणी के गर्भ से, तीनों के बाबा लोग माने पिता के पिता एक थे। उनकी 2 स्त्रियां थी, एक से सूरसेन हुए और दूसरे से नंद बाबा के पिताजी परिजन्य जी, और परिजन्य से नंद बाबा और उधर सूरसेन से वसुदेव, इसलिए दोनों भाई लगते हैं। इनकी पत्नियों में बड़ा प्रेम था, इसलिए कंस के डर से वहीं पर भेज दिया, ये गर्भवती है 3 महीने की, वहाँ पर उसको भेज दिया, यशोदा जी की यहाँ गोकुल में भेज दिया। 3 महीना के बाद में और 4 महीने बीत गए, 7 महीने की जब हुई तो 7 महीने का देवकी का गर्भ और इनको 7 महीने का गर्भ था। योग माया ने ये दिखलाया कि देव जी का गर्भ नष्ट हो गया किंतु देवकी जी का वह गर्भ लेकर के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो देवकी जी के गर्भ में अंश बलदेव जी हैं, उनको लेकर के उनके पूर्ण जो बलदेव जी हैं उनमें मिला दिया, एक कर दिया, वो दोनों एक हो गए। लोगों ने समझा जैसे इनका तो गर्भ समाप्त शेष हो गया और वो वहां पर पहुंच करके और 7 महीना लगा, पहले 14 महीना, 14 महीने में बलदेव जी का जन्म हुआ श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन, कृष्ण के जन्म के केवल 8 दिन पहले, और भाद्र मास की अष्टमी को कृष्ण जी पैदा हुए। इधर में वो 8 दिन पहले मैंने श्रावण महीने के पूर्णिमा को बलदेव जी ने जन्म ग्रहण किया, उसमें देवकी के पुत्र भी आ गए हैं पूर्ण बलदेव जी। अब 14 महीने इनका हुआ और इधर में जसोदा जी को और देवकी को पुनः एक समय में ही गर्भ रहा और वो 8 मास जाते जाते अब असंपूर्ण 8वें महीने में ही होना चाहिए 10 महीना, तो उनका तो 4 महीना बढ़ गया और इनका 8वें महीने में ही अभी 2 महीना कम में ही देवकी और जसोदा जी दोनों एक साथ में उनको बच्चे पैदा हुए। यहां पर अहम तु अंश भागे न भूत्वा, ये श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया, मैं देवकी के पुत्र रूप में अहम तु अंश भागे ने अंश भाग में मैं यहां पर जन्म लूंगा देवकी के गर्भ से। अंश भाग माने क्या, वहां पर ऐसे खंड भी खंड नहीं, जब संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण माधुर्य जब एक साथ में एकत्रित होता है और वह ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा आच्छादित हो जाता है तो इसको कहते हैं संपूर्ण रूप से संपूर्ण कला से कृष्ण का प्रकट होना। और जहां पर संपूर्ण ऐश्वर्य है माधुर्य वहां कम है, इसको कहते हैं अंश। इसलिए अंश भागे न हम जसोदा देवकी पुत्र भूत्वा, इसको श्रीमद् भागवत में बतलाया कि मैं अंश भाग से देवकी के घर, अंश भाग से मैंने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के इनके यहां पर प्रकट हुए और जसोदा को गोकुल में जसोदा जी के गर्भ से संपूर्ण कलाओं से और रसों से पूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण पूर्ण रूप में जसोदा जी के पुत्र। जैसे मत भागवत में ऐसा तो लिखा नहीं, लिखा तो है जरा देखने के लिए आंखें चाहिए, देखने के लिए आंखें, केवल विद्या के द्वारा नहीं होगा, पांडित्य के द्वारा नहीं होता, इसको और शास्त्रों के साथ में देख करके ये कहना चाहिए। परीक्षित महाराज जी वसुदेव नंदन से संबंधित थे, वसुदेव जी की बहन कुंती जी ने? और कृष्ण की बुआ जी लगती हैं कुंती जी, और अर्जुन भीम इत्यादि कुंती के पुत्र हैं और अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। इसलिए ये सब मथुरेश जो वसुदेव जी हैं उनसे संबंधित जो परीक्षित महाराज जी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए ये बतला रहे हैं ये तुम्हारे पूर्वज जो हैं जो कृष्ण जो हैं ये यहाँ पर अवतीर्ण हुए उनको प्रसन्न करने के लिए। आया समझ में कि नहीं? यदि पहले ही कह देंगे तो वो कुछ प्रसन्न नहीं। अब इसको फिर से समझिए, कृष्ण और अर्जुन भाई हैं, फुफेरे भाई हैं ना। अब अर्जुन का लड़का अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, और उधर वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण हैं। दूसरा एक और संबंध, कृष्ण की बहन सुभद्रा जी, और सुभद्रा जी के पुत्र कौन है? अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हैं
परीक्षित महाराज।
इसलिए उनका उस रूप में संबंध, ब्रजेंद्र नंदन से उन लोगों का संबंध नहीं है, ये समझो। यदि कोई ब्रज रसिक, रसिक गोप का कुल का कोई होता, वृंदावन का कोई होता, तो उसे कहते ये यशोदा के ये लाला है। इसलिए पहले वो जब तक होश है हरि कथा में, तब तक तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे संबंधित वंश का ही कृष्ण को बतला करके, उनको उत्साह दे करके उनकी कथा कह रहे हैं। ब्रज का उस समय में वहां पर कोई नहीं है, इसलिए उनको ये कथा कह रहे हैं। किंतु जब देखते हैं शास्त्रों को अच्छी तरह से, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि की टीकाओं में, तो उस समय में देखते हैं कि ठीक ये यशोदा के भी पुत्र हैं। अभी कृष्ण का जन्म होगा, जन्म हो गया, मथुरा में कोई बधाई नहीं बजी, कोई जात कर्म नहीं हुआ, कोई उत्सव नहीं हुआ। अभी जो सवेरे दान और दक्षिणा और बधाई के कीर्तन इत्यादि हुए, उत्सव हुआ, ये कहाँ में हुआ? ये गोकुल में सवेरे ये हुआ, मथुरा में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन में कुछ गायें दान कर दी, बस। वहां पर उत्सव यदि होता ना तो बड़ा भारी मुश्किल हो जाता, कंस सबको मार गिराता, न जाने क्या हो जाता। इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। पुत्र होते ही गोदी में ले लिया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हुए। होने के बाद में इन लोगों ने स्तव स्तुति की, भगवान ने कहा कि तुम लोगों के विश्वास के लिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आया हूं, मैं वही हूं जो प्रिश्नी गर्भ और सुतपा, उन दोनों का, दोनों को दर्शन देकर के तुम लोग वही हो, इसको विश्वास दिलाने के लिए मैं भगवंत रूप में आया। उन लोगों ने प्रार्थना की ये कंस अभी आएगा, वैसे उनके हाथों से कैसे ही रक्षा कर लूंगा, इसलिए आप प्राकृतिक शिशु, स्वाभाविक शिशु बने। तो कृष्ण क्या हो गए? प्राकृत शिशु बभूव। प्राकृत शिशु माने क्या? प्राकृत माने यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में, गोलोक वृंदावन में जैसा उनका रूप होता है वैसा रूप हो गए। यहां पर प्राकृत माने प्रकृत रूप में, इसलिए गोलोक वृंदावन में जैसे दुभुज श्याम सुंदर छोटे बच्चे हैं, ठीक उसी तरह से अपना रूप बना। और बोले जी हमको गोकुल में दे आना। वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञा इत्यादि भूल गए, जाना है नरक में जाएंगे, किंतु इस बच्चे को कंस को नहीं देंगे, किंतु जाऊं कैसे? इसके बाद में उन्होंने इच्छा की, जब बच्चे को गोदी में लेकर के चलो, जब ही इच्छा की तभी हाथ की हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई, कपाट खुल गए और दरमान सो गए। ठीक जिस समय में जाने की इच्छा की और बच्चे को गोदी में लिए, इसी समय में उनको गोकुल में यशोदा जी को पुत्री पैदा हुई, ये भागवत में लिखा। अब उनको एक पुत्री हुई और इनको पुत्र, ये तो लिखा, और बातें थोड़ा सा छिपा दिया। क्या छिपाया उसी को बतला रहे हैं। जिस समय में उस लड़की को लेकर के आए, अभी जात कर्म उत्सव नहीं हुआ, अभी रात ही में यहां से लेकर के बच्चे को गए, और जब वहां पर गए साथ ही साथ में वो जो दुभुज कृष्ण वहां थे, इस बच्चे को जो वसुदेव जी ले गए थे आकर्षण करके एक में बना लिया, एक हो गए। इसको किसी ने नहीं देखा, यशोदा जी ने लक्ष्य नहीं किया, क्योंकि उनको मीठा मीठा थोड़ा सा दर्द था और वो कुछ थोड़ी 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 कुछ संज्ञाहीन सी हुई, इसलिए वो देख नहीं सके। लड़की हुई है कि लड़का हुआ है, पहले में नहीं देखी न दूसरे को, और इतने में पहुंच करके उन्होंने उसको रख दिया। लेकर के आए जबकि लड़की को, कंस आया और उनके हाथों से छीन कर, और एक पत्थर पड़ा हुआ था उस पर जो उससे मारा, किंतु वो लड़की साधारण नहीं, उनके हाथों से छूट गई। अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण किया और थोड़ा सा आकाश में जाते समय अपने पैरों से उसे थोड़ा सा ठोकर लगा दिया, और ठोकर लगाते ही वो तिल मिला करके गिरा, बड़ी मुश्किल से बचा। ऊपर में देखा तो अष्टभुजा दुर्गा, ये तो मेरी आराध्या है। इतने बोली, तुम्हारे मारने वाला रे कंस, तू क्या उसे मारेगा, तुम्हारे मारने वाला अन्यत्र पैदा हो गया। अन्यत्र कहां पैदा हो गया, यदि यहां पर होता तो ये कह देते यहीं पर पैदा हुआ। उन्होंने उसको झूठ नहीं कहा, नहीं यहां वहां कहां हो गया, तो वहां पर लिखा अदृश्यत अनुजा विष्णु, विष्णु की अनुजा, अनुजा माने अनुजा, जो पीछे से उत्पन्न छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। यदि कृष्ण में देवकी के पुत्र जो कृष्ण हैं इन्हीं को मान लिया जाए, जो यही एकमात्र संतान हुए इनकी और गोकुल में नहीं जन्मे, तो इनकी अनुजा कहाँ उस समय उत्पन्न हुई, और जो अदृश्यत हो गई उसके हाथों से अदृश्य हो गई, तो यह बात गलत हो जाएगी। इसलिए वहां पर उसके हाथों से अदृश्य हो गई वो कौन थी, विष्णु की अनुजा, कौन विष्णु कंजा, कृष्ण जो वहां पर उत्पन्न पहले थे, और इसके बाद ये उनकी बहन हुई। दूसरी बात, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महात्मना महामना, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंद भी आत्मज, आत्मा जाए तो पुत्र, आत्मा से जो पुत्र हुआ, ये बड़े आनंदित हुए। तू शब्द का प्रयोग किस लिए किया, यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है, तू माने होता है भी, नंद भी माने वसुदेव और नंद भी, ऐसा लो, वसुदेव के वहां अंश रूप में, अंश भागेन अहम भविष्यामि, अंश रूप में मैं वहां पर केवल ऐश्वर्य रूप में वहां पर जन्म लूंगा, ऐसा कहा है। इसलिए वहां पर तो हुए अंश रूप में, शंख चक्र चक्र गदा पद्म लेकर पूर्ण रूप से, इसलिए नंदस्तु, नंद भी पुत्र के उत्पन्न होने पर, वसुदेव भी पुत्र के उत्पन्न होने पर, वसुदेव जी दान पुण्य जात कर्म उत्सव, ब्राह्मणों को दान लेना और सब लोगों को लुटाना माल, ये सब नहीं किया, किंतु नंद बाबा ने क्या किया, पुत्र उत्पन्न, नंद भी, नंद ने क्या किया, पहले जात कर्म कराया। जात कर्म किसको कहते हैं, जात कर्म कहते हैं जब गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है या लड़की उत्पन्न होती है, तो नाड़ी उसके साथ में रहती है, नाड़ी छेद के बिना जात कर्म नहीं हो सकता, इसलिए पहले नाड़ी छेद होगा तब इसके बाद में जात कर्म होते हैं। जात कर्म माने क्या, कुश लेकर के ब्राह्मण लोग आएंगे, सांडिल्य ऋषि इत्यादि और बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, रक्षा मंत्री इत्यादि करेंगे, और पहले स्वस्ति वाचन करेंगे, स्वस्ति वाचन ओम स्वस्ति नो गोविंद इत्यादि करेंगे, और स्वस्ति वाचन करके कुश से झाड़ करके रक्षा मंत्री इत्यादि दे करके मैया को और पिता बच्चे को दोनों को आशीर्वाद इत्यादि देंगे, इसको कहते हैं जात कर्म। मथुरा में जात कर्म नहीं हुआ, न तो नाड़ी छेद हुई और न तो कुछ हुआ, वहां तो भगवान 16 वर्ष की रूप में केश लंबे लंबे, सुंदर सोने का मुकुट, हाथों में बाजू बंद, यहां पर सोने के कड़ूले, पैरों में यहां पर सोने के आभूषण सब लेकर के 16 वर्ष के रूप में अवतीर्ण हुए। बच्चे के सिर पर तो उस समय में केश भी नहीं होते, और ये 16 वर्ष की स्थिति में आए, इसलिए यहां पर जन्म नहीं, यहां पर प्रकट लीला है, आविर्भाव और तिरोभाव जैसा होता है, प्रकट हो गए एकदम। और वहां पर क्या हुआ, गर्भ से जन्म लिया, रात में सब लोगों को खबर लग गई। वसुदेव जी जब लेकर के चले आए तो चारों तरफ में सवेरे होते होते उपानंद के यहाँ खबर पहुंची, शांडिल्य ऋषि के यहाँ, घर घर में खबर पहुंच गई। पहला लड़का हुआ है प्रौढ़ावस्था में, आशा नहीं थी ये बच्चा होगा, और हुआ। चारों तरफ में बधाव बजने लगा और सब लोग दूध दही मक्खन घड़े में मिश्रित, हल्दी चूर्णी इत्यादि सब लेकर के, झिंगली और जो जो कुछ होना चाहिए अलंकार सब लेकर के वहां पर नंद के द्वारवाजे पर बधाई बजने लगी। फिर ब्राह्मण लोग आए, जात कर्म उन्होंने कराया, नाड़ी छेद इत्यादि हुई और तब फिर दूसरों को दान इत्यादि देने लग गए और स्त्रियां गान करने लगी, लोग भी गान करने लगे, नट इत्यादि अपना नृत्य करने लगे, बड़ा जोर से बधाव इत्यादि बजने। तो यहाँ पर नंदस्तु के द्वारा तू ऐसे ही प्रयोग नहीं है, रामा हो रामा ऐसा जैसा, केवल सुर भरने के लिए वहां पर श्लोक में पाद पूरण के लिए नहीं आया बल्कि इसलिए आया। दूसरी बात, अरे वहां पर आग कहाँ निकल रही है, आग है नका है। प्राग एव वसुदेवस्य क्वचित जातस्तो बाल, जब उनके पुरोहित वसुदेव महाराज जी के जब आए यहाँ नंद गांव में, नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी नाम का शरण करने के समय में पहले कहा, यह तुम्हारा जो आत्मज है यह कभी पहले वसुदेव जी के यहाँ भी हुआ, मतलब क्या, अरे इसी जन्म में वसुदेव जी के यहाँ तुम्हारे यहाँ हुआ, इसलिए इसके द्वारा भी प्रमाणित होता है कि दोनों जगह में उत्पन्न हुए, यहाँ पर प्रकट हुए और वहां पर जन्म। खूब सावधानी से सुनना, नौमिद्धते अब्र बपुषे तड़िदंबराय गुंजा वतंस परिपच्छल सन्मुखाय वन्न स्रजे कवल बेत्र विशान वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदु पदे पशुपंगजाय पशुपंगजाय। पशु प माने पालन करने वाले माने नंद बाबा, ये ब्रजराज हैं, कृष्ण ब्रजराज नहीं है, वो ब्रजराज नंदन है, ब्रज कुमार है ने? और ये है ब्रजराज, कौन नंद बाबा, और एक ब्रज और भी ब्रजराज हैं, इनके मित्र इनसे भी बड़े वो हैं वृषभानु महाराज, वो भी ब्रजराज। तो यहां पर पशुपांग जाय पशुओं को पालन करने वाले नंद बाबा जो हैं उनके अंग से जो जात हैं, ये कौन हुए यहां पर, कहां पर उत्पन्न हुए, नंद बाबा के घर में। और भी देहिनां गोपिका सुत जन्मना ब्रज, ब्रज कृष्ण के जन्म से ब्रज धन्य हो गया। कहां पर जन्म हुआ, ब्रज में, जहां पर लक्ष्मी जी सब समय उस ब्रज की सेवा करती हैं, ये कृष्ण के जन्म ब्रज में होने से हुआ। नम खलु गोपिका नंदनो भवान, कृष्ण से पूछती हैं, कृष्ण के अंतर ध्यान पर गोपिया, नखलु गोपिका नंदनो भवान, क्या आप गोपी पुत्र नहीं हैं, क्या जसोदा के पुत्र नहीं हैं, अरे जसोदा जी तो परम दयालु हैं, और आप निश्चित होकर के हमको त्याग करके अंधेरी रात में और आप चले गए, इसलिए वहां पर न खलु गोपी, निश्चित रूप में, खलु माने निश्चित रूप में आप जसोदा के ही पुत्र हैं। बल्लवी नंदन, ये क्यों कहा गया शास्त्रों में, बल्लवी नंदन, बल्लवी माने गोपी, गोपी नंदन यहां पर, और नंद गोप तनया, ये भी सब पुराणों में ये सब उल्लिखित हैं। और क्या ये गोपियां जो थी कुमारियां कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, पति में कुरु ते नमः, मैं आपको आप हमको पति दें, कौन पति हो, नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरु ते नमः, नंद के जो पुत्र हैं वो हमारे पति हो हे देवी, यही हमें बात। और देवकी जन्म बादौ क्या है इस श्लोक को, जयति जन निवासो देवकी जन्मवा। अरे देवकी का जन्म जो कृष्ण के हुआ ऐसा कहते हैं, ये बाद मात्र है लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? मथुरा के लोग कहते हैं, जो मथुरा में लोग हैं वो लोग कहते हैं। ब्रह्मा जी भी कभी कभी ऐसा कहा है, किंतु आंशिक रूप में कहा है। ब्रह्मा जी ने उन्हीं के श्लोक में है, नोमोध्यते अब्रुवपुः से पशुपांगजाय, इसलिए गुरु हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनके बात पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। मथुरा में खूब लड़ाई होती, वो कहते हैं कि यही पर जन्म हुआ, वहां पर जन्म नहीं। किंतु इन श्लोकों को देखने पर इसका खंडन नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए देवकी जन्म बादो, देवकी के पुत्र हैं ये बाद मात्र है, यशोदा के ही ये पुत्र हैं, इनके यहां तो भगवान प्रकट हुए बस। और भाई ये तो आप कहते हैं, किंतु देखो शास्त्रों में तो ये लिखा है विजय सख सखे, गोपियों ने खुद कहा विजय सख सखे, और रुक्मिणी कांत भी कहीं आया है ऐसा तो लिखा था। रुक्मिणी कांत कौन है? ये तो वसुदेव जी के लड़के। तो अरे भाई तो लिखा तो है, किंतु देखो जैसे वो फिर क्या कहते हैं, सुबल सख, और कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। देखो ले आए ने ब्रज में, इसलिए उससे भी ये प्रसिद्ध चीज है, इसलिए ये नंद बाबा के ही पुत्र हैं। विशेष करके ब्रह्मा जी के नाक से एक सुअर निकला, छोटा सा, बहुत छोटा, और देखते देखते ही वो बड़ा हो गया। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, भीषण पर्वत का आकार होकर के और नीचे जमीन में गया, पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके निकाल कर। तो ये नाक से निकले तो ब्रह्मा जी के पुत्र भय कि नहीं तो सोना चाहिए, किंतु कोई तो पुत्र कहता नहीं। और नृसिंह जी खंभे से प्रकट हो गए, तो नृसिंह जी के बाप का नाम खंभा है या मैया उनकी खंभा है, ऐसा तो कोई कहता नहीं। इसलिए गर्भ से उत्पन्न होने से ही नहीं होगा, उसके ऊपर में पुत्र भाव होना चाहिए। ऐसे भागवत में कितने सुना शेप और कितने कितने लोगों का उदाहरण है, उसको अभी छोड़ करके हम लोग आए। तो इसलिए केवल पुत्र से नहीं होगा, दूसरा भी लड़का यदि पुत्र का काम करता है तो पुत्र है, और नहीं तो कुपुत्र पुत्र नहीं है। इसलिए वसुदेव जी ने जन्मते ही दे आए, कहां दे आए, मैं पालन करने में असमर्थ हूं, इस बच्चे को रक्षा करने में असमर्थ हूं, अब ये तुम्हारा ही पुत्र है, तुम ही इसको रक्षा करो, अब मैं लड़की ले जाता हूं बदले में, अब पुत्र दे जाता हूं। ठीक है, लड़की तो हो गई अंतर्ध्यान, अब उसको लौटा करके, अब फिर नंद बाबा को कभी दिया, कभी दिया तो नहीं, तो पुत्र पर तुम्हारा हक कैसे है, तुम्हारा ही पुत्र है मान लिया, किंतु अदला बदली तुमने की ना, तुम अपनी अपने लड़के को दे आए और लड़की ले आए, अब तुम लड़की ले आओ और लड़का ले जाओ, तो कभी तो किया नहीं, इसलिए उनका कैसे पुत्र हो गया। इसलिए केवल ऐसा करने से नहीं होगा, और भी भागवत में ऐसा कहा गया, जज्जत धियो धिया तो उर्गाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। जो भावना जैसा करता है वैसे ही प्रभु के दर्शन और वैसे ही अपने हृदय में उनको धारण करता है। ब्रह्मवादी लोग अपने मन में ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनके हृदय में कृष्ण कहां से आएंगे। भक्त लोग क्या करते हैं, सब समय कृष्ण की भावना करते हैं, इसलिए भक्त ने पुत्र के रूप में कृष्ण की भावना की, उनके यहां पुत्र के रूप में कृष्ण हुए, और यहां पर वो संचक्रता गदाधर वाले भगवान की उन्होंने आराधना की, और भगवान को सब समय हृदय में धारण करते हैं, इसलिए भगवान उनके यहां प्रकट हुए, आविर्भाव हुए। लिखा है ऐसा इसमें हरिवंश में, हरिवंश कहते हैं महाभारत का परिशिष्ट भाग, वो भी महाभारती है, गर्भ काले तू असंपूर्णे अष्टे मासी दे दौ स्त्रियौ देवकी च यशोदात सुसुवाते समं सदा। स्पष्ट रूप से लिखा है एक ही समय में भाद्र मास की अष्टमी के आधी रात के 12 बजे यशोदा जी को वहां पर गोकुल में और यहां पर देवकी को यहां पर कारागार में ये दोनों प्रकट हुए। यहां पर प्रकट हुए और वहां पर उन्होंने जन्म लिया स्पष्ट रूप से लिखा है। दूसरी तरफ में भागवत में जो देवकी का पुत्र लिखा है वहां पर देवकी नाम यशोदा का भी है ये भी लिखा है। इसलिए जहां जहां देवकी का आया है वो यशोदा को भी समझ लो। तीसरी बात ऐसा कृष्ण जामल में भी लिखा वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेव अखिलात्मनी लीलो नंद सुते राजन घने सौदामिनी जथा। कहते हैं हमारे गोस्वामी लोग कि जिस समय कंस कारागार में कृष्ण चतुर्भुज रूप छोड़ करके दुहिज हो गए और उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की उसी समय में वो गोकुल वाले कृष्ण यहाँ पर पधार करके और चतुर्भुज कृष्ण को अपने लिंग अपने अंदर के जय कैसे जैसे आकाश में सौदामिनी माने बिजली छिप जाती इसी तरह से उनको अपने अंदर में लिंग किया। इसलिए इन सब प्रमाणों के आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ भी मथुरा में कंस के कारागार में आंशिक रूप में भगवान केवल ऐश्वर्य रूप में या अंश माने भी पूर्ण